एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे दक्षिणी कोने में, अंटार्कटिका। एक ऐसी जगह जो नक्शे पर भले ही नीचे हो पर हमारे ग्रह के भविष्य के लिए बहुत ऊपर है।
हाँ, और ये सिर्फ बर्फ और पेंगुइन की कहानी नहीं है, जैसा आपने कहा।
आज हम क्लॉस डॉट्स की किताब द अंटार्कटिक ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के सहारे समझेंगे कि ये सफेद महाद्वीप कैसे हमारी कल्पनाओं, विज्ञान, राजनीति और हाँ आजकल की वैश्विक चिंताओं का एक अहम केंद्र बन गया है।
सही कहा, खासकर जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है या फिर देशों के बीच सहयोग की।
हाँ, तो अंटार्कटिका को समझना जरूरी हो जाता है, उसके बिना तस्वीर अधूरी है।
तो चलिए फिर खोलते हैं इस बर्फीले रहस्य की परतें, देखते हैं कि ये दूर की दुनिया हमारे इतने करीब क्यों है। और इस सफर में हमारे गाइड हैं क्लॉस डॉट्स। ये कोई साधारण भूगोल या इतिहास के प्रोफेसर नहीं है।
अच्छा
जी हाँ, ये लंदन यूनिवर्सिटी के रॉयल हॉलवे में जियोपॉलिटिक्स मतलब भू राजनीति के प्रोफेसर हैं, और ध्रुवीय इलाकों पर, आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों पर, दुनिया के जाने माने एक्सपर्ट्स में से हैं।
जियोपॉलिटिक्स और उनकी खासियत क्या है, मतलब उनका नजरिया कैसे अलग है?
देखिए, वो एक क्रिटिकल जियोपॉलिटिशियन है।
क्रिटिकल जियोपॉलिटिशियन?
हाँ, मतलब वो सिर्फ ये नहीं बताते कि भाई अंटार्कटिका में क्या है या कब खोजा गया, वो इसकी चीर फाड़ करते हैं कि कैसे किसी जगह को राजनीतिक मतलब दिए जाते हैं,
अच्छा,
कैसे देश अपनी पहचान, अपनी ताकत इन जगहों पर थोपते हैं, और कैसे कहानियां, चाहे वो बहादुर खोजियों की हों या फिर वैज्ञानिक खोजों की,
हाँ,
कैसे वो कहानियां किसी इलाके पर दावे को सही ठहराने का एक जरिया बन जाती हैं।
मतलब कहानी सिर्फ कहानी नहीं, राजनीति भी है।
बिल्कुल, डॉट्स इसी बात के माहिर हैं कि मीडिया, संस्कृति, विज्ञान, ये सब मिलकर दूर की जगहों की हमारी समझ को कैसे बनाते बिगाड़ते हैं। वो हमें तथ्यों से आगे ले जाकर दिखाते हैं कि अंटार्कटिका के पीछे शक्ति संतुलन, सांस्कृतिक मायने और राजनीतिक रस्साकशी क्या है।
तो अब आते हैं किताब पर। ये किताब उस आम छवि को तोड़ती है कि अंटार्कटिका बस एक खाली, वीरान, बर्फीला रेगिस्तान है।
हाँ, डॉट्स का मुख्य तर्क यही है कि अंटार्कटिका इससे कहीं ज्यादा है। ये एक जटिल और गतिशील मानवीय रचना है।
मानवीय रचना, ह्यूमन कंस्ट्रक्ट, ये सुनने में थोड़ा अकादमिक लगता है। आसान शब्दों में?
आसान शब्दों में इसका मतलब है कि आज हम अंटार्कटिका को जैसा जानते हैं उसे हमारी कल्पनाओं ने, हमारी महत्वाकांक्षाओं ने, हमारी आपसी लड़ाइयों और हमारे आदर्शों ने घड़ा है।
अच्छा,
इसे खोजा गया, इस पर दावे हुए, इसके लिए नियम बने, इसकी वैज्ञानिक जांच हुई, ये सब इंसानी नजरिए से हुआ है। किताब इस सोच को तोड़ती है कि अंटार्कटिका कोई एकदम पवित्र, राजनीति से परे, सिर्फ कुदरती जगह है।
समझ गया, तो ये हमेशा से एक स्टेज रहा है।
बिल्कुल, एक भू राजनीतिक मंच जहां देशों ने अपनी ताकत दिखाई, एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला जहां धरती के राज खुले, एक सांस्कृतिक प्रतीक पवित्रता का, या कहें इंसानी हिम्मत की हद का,
और अब एक पर्यावरणीय बैरोमीटर भी।
हाँ, सबसे अहम, जो हमें धरती की सेहत का हाल बता रहा है। इसकी पहचान लगातार गढ़ी जा रही है देशों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, और अब तो पर्यटकों द्वारा भी।
ये किताब हमें एक लंबे सफर पर ले जाती है ना?
जी हाँ, प्राचीन यूनानियों की कल्पना से शुरू होती है कहानी, टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निता, अनदेखी दक्षिणी जमीन।
हाँ, वो संतुलन वाली बात।
सही, फिर 20वीं सदी की शुरुआत का वीर युग आता है जहां राष्ट्रवाद हावी था।
स्कॉट अमुंडसन,
वही। फिर कहानी मुड़ती है 1957-58 के अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष, यानी IGY की तरफ,
जहां विज्ञान आगे आया।
हाँ, और जिसने अंटार्कटिक संधि प्रणाली की नींव रखी, और आखिर में हम आज की चुनौतियों तक पहुंचते हैं, संसाधन, पर्यटन और सबसे बढ़कर जलवायु परिवर्तन।
तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, शुरुआत करते हैं कल्पना से। अंटार्कटिका एक जगह बनने से पहले एक विचार था।
बिल्कुल, टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा। सदियों तक लोगों को लगता रहा कि उत्तर के भूभाग को बैलेंस करने के लिए दक्षिण में एक विशाल जमीन होनी ही चाहिए। ये नक्शों पर भी दिखती थी बिना किसी सबूत के।
कमाल है, तो शुरू के नक्शे सिर्फ जानकारी नहीं देते थे, वो उम्मीदें जगाते थे।
हाँ, वो खोज की इच्छा पैदा करते थे। फिर 1770 के दशक में कैप्टन कुक आए। उन्होंने इसके चारों तरफ चक्कर लगाया और बताया कि भाई ये तो बर्फीली पहुंच से बाहर की जगह है। पर वो कल्पना का असर वो आज भी कहीं ना कहीं बाकी है।
अच्छा, कल्पना के बाद आया वीर युग, स्कॉट, अमुंडसन, शेकलेटन, बहादुरी की कहानियां।
हाँ, लेकिन डॉड सिर्फ बहादुरी नहीं देखते, वो इन अभियानों को उस जमाने के राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और हाँ मर्दानगी की सोच से जोड़कर देखते हैं।
मतलब
जैसे वो ध्रुव तक पहुंचने की दौड़ थी स्कॉट और अमुंडसन के बीच, वो सिर्फ रेस नहीं थी, वो ब्रिटेन बनाम नॉर्वे राष्ट्रीय गौरव का टकराव था। और इन यात्राओं की कहानियों को देशों ने खूब इस्तेमाल किया, राष्ट्रीय मिथक गढ़े गए। जैसे स्कॉट की दुखद हार को ब्रिटेन में कैसे बलिदान और राष्ट्रीय जज्बे से जोड़ा गया।
तो वहां जाना, झंडा गाड़ना, कहानी बनाना, ये सब एक तरह से जमीन पर दावा करने का तरीका था, संधि से पहले।
बिल्कुल, अनौपचारिक दावा, ह्यूमन प्रेजेंस और नैरेटिव यानी कहानी गढ़ना, ये दोनों ही दावे के हथियार थे।
तो कल्पना, फिर राष्ट्रीय गौरव, लेकिन फिर विज्ञान सामने आया, एक बड़ा मोड़।
हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और खासकर 1957-58 का अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष IGY, ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम था
जिसमें दुश्मन देश भी साथ थे, अमेरिका, सोवियत संघ।
हाँ, यही तो खास बात थी, शीत युद्ध के चरम पर भी विज्ञान ने उन्हें साथ ला दिया। दर्जनों देश मिलकर पृथ्वी का अध्ययन कर रहे थे और अंटार्क्टिका उसका एक बड़ा केंद्र था।
तो IGY ने बदला क्या?
उसने अंटार्क्टिका में विज्ञान को सबसे जरूरी, सबसे वैध गतिविधि बना दिया। इसने देशों को बात करने का एक नया गैर फौजी मंच दिया।
और वो जो 7 देशों के दावे थे, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन।
हाँ, उन दावों के मुश्किल मुद्दे को इसने एक तरह से किनारे कर दिया। दावे खत्म नहीं हुए, पर फोकस अब विज्ञान और सहयोग पर आ गया। IGY के माहौल ने स्थायी बेस बनाने को बढ़ावा दिया।
और फिर इसी ने संधि की नींव रखी।
बिल्कुल, IGY का जो वैज्ञानिक ढांचा बना, उसी ने आगे चलकर अंटार्कटिक संधि प्रणाली ATS का रास्ता खोला। और इसी दौरान वहां बड़ी वैज्ञानिक खोजें भी हुईं, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के सबूत, बाद में ओजोन क्षेत्र का पता चलना। इसने साबित किया कि ये कितनी जरूरी नेचुरल लैब है।
तो आते हैं ATS पर, 1959 में संधि हुई।
जी, IGO में शामिल 12 शुरुआती देशों ने दस्तखत किए। शीत युद्ध के माहौल में ये वाकई कूटनीति की एक बड़ी जीत थी।
इसके मुख्य सिद्धांत क्या थे?
पहला, अंटार्कटिका सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए इस्तेमाल होगा, कोई फौजी गतिविधि नहीं।
दूसरा,
वैज्ञानिक खोज और सहयोग की पूरी आजादी।
तीसरा,
वैज्ञानिक नतीजे सबके साथ साझा किए जाएंगे।
और सबसे जरूरी, वो दावों वाला मुद्दा।
हाँ, सारे क्षेत्रीय दावे फ्रीज कर दिए गए, मतलब ना कोई नया दावा करेगा और ना ही पुराने दावों को माना या नकारा जाएगा। एक तरह से मुद्दे को भविष्य के लिए टाल दिया गया।
और ये ATS सिर्फ 1959 की संधि नहीं है, इसमें बात के समझौते भी शामिल है ना?
बिल्कुल, जैसे समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए CCAMLR और पर्यावरण के लिए बहुत अहम मैड्रिड प्रोटोकॉल
1991।
मैड्रिड प्रोटोकॉल जिसने खनन पर रोक लगाई।
हाँ, जिसने अंटार्कटिका को शांति और विज्ञान के लिए समर्पित प्राकृतिक रिजर्व घोषित किया और खनन पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी। ये बिना किसी एक सरकार के चलने वाला एक अनोखा सिस्टम है।
वाकई अनोखा है, पर चुनौतियां भी हैं। कुछ लोग इसे अमीर देशों का क्लब कहते हैं और नियमों को लागू करवाना हमेशा आसान नहीं होता।
शांति और विज्ञान ठीक है, पर पैसा, आर्थिक हित क्या है वहां? डॉड्स पर भी बात करते हैं।
हाँ, और वो संरक्षण बनाम शोषण के तनाव को उभारते हैं। मैड्रिड प्रोटोकॉल ने खनिजों पर रोक तो लगा दी, पर मछली पकड़ना एक बड़ा मुद्दा है, खासकर क्रिल का।
क्रिल, वो छोटा सा जीव।
हाँ, छोटा है पर पूरे इकोसिस्टम का आधार है। वेल, सील, पेंगुइन सब इसे खाते हैं। अब मछली के चारे और हेल्थ सप्लीमेंट के लिए इसकी व्यावसायिक मांग बढ़ रही है। इसे टिकाऊ तरीके से मैनेज करना CCAMLR के लिए बड़ी चुनौती है।
और एक और चीज थी, बायो प्रोस्पेक्टिंग।
हाँ, वो भी दिलचस्प है। वहां बहुत ठंड में रहने वाले सूक्ष्म जीव मिले हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स। उनमें अनोखे गुण हैं जो दवाइयों या इंडस्ट्री में काम आ सकते हैं।
लेकिन मुश्किल ये है कि इनका मालिक कौन?
सही पकड़ा, जमीन किसी एक देश की नहीं, तो वहां मिलने वाले जेनेटिक संसाधनों पर किसका हक है? ये बड़े कानूनी और नैतिक सवाल है।
और तेल खनिज रोक है, पर क्या हमेशा रहेगी?
कहना मुश्किल है, अनुमान है कि भंडार हो सकते हैं, भविष्य में अगर संधि कमजोर पड़ती है या कोई देश हटता है तो ये मुद्दा फिर उठ सकता है। फिलहाल तो पर्यटन और मछली पकड़ना यही मुख्य आर्थिक गतिविधियां हैं।
पर्यटन की बात आई, ये भी एक जटिल मुद्दा है ना?
बिल्कुल, दोधारी तलवार है, 1990 के दशक से तेजी से बढ़ा है। एक तरफ तो अच्छा है कि लोग जाएं, देखें और फिर उसके संरक्षण के लिए आवाज उठाएं, राजदूत बने,
लेकिन दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ खतरा है, क्रूज जहाजों से प्रदूषण, जानवरों के जीवन में दखल, बाहर से नई प्रजातियों के आने का डर। और डॉट्स ये भी कहते हैं कि मीडिया और पर्यटन मिलकर अक्सर अंटार्कटिका की एक ऐसी पवित्र अछूती छवि बनाते हैं जो वहां की असलियत, इंसानी बस्तियां, वैज्ञानिक स्टेशन, राजनीतिक मुद्दे, इन सबको छुपा देती है।
तो ये सब जानने के बाद भविष्य क्या दिखता है अंटार्कटिका का, डॉट्स क्या कहते हैं?
वो दो बड़ी चुनौतियां बताते हैं। पहली और सबसे बड़ी, जलवायु परिवर्तन।
हाँ, ये तो हर जगह है,
पर अंटार्कटिका में इसका असर बहुत ज्यादा और सीधा है। वो सिर्फ शिकार नहीं बल्कि असर को बढ़ाने वाला भी है, खासकर पश्चिम अंटार्कटिक बर्फ की चादर का पिघलना। अगर वो गई तो समुन्दर का स्तर कई मीटर बढ़ सकता है।
ये तो डरावना है।
हाँ, ये पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य का आईना है।
और दूसरी चुनौती?
भू राजनीतिक तनाव। दुनिया बदल रही है, देशों के बीच होड़ बढ़ रही है, संसाधनों के लिए, प्रभाव के लिए राष्ट्रवाद भी बढ़ रहा है। क्या ये ताकतें ATS की सहयोगी भावना को कमजोर कर देंगी?
तो निष्कर्ष क्या है?
निष्कर्ष यही कि अंटार्कटिका का भविष्य इस बात का टेस्ट है कि हम इंसान अपने साझा संसाधनों, जिन्हें ग्लोबल कॉमन्स कहते हैं, उनका प्रबंधन कैसे करते हैं।
चलिए, अब अगर हम इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें निकालें तो वो क्या होंगी?
सबसे पहली बात तो वही जो हमने शुरू में कही, अंटार्कटिका एक मानवीय रचना है। ये सिर्फ भूगोल नहीं, हमारी संस्कृति, राजनीति, विज्ञान का आईना है।
दूसरी, वहाँ विज्ञान और राजनीति अलग नहीं है, हर रिसर्च स्टेशन एक प्रयोगशाला भी है और एक राष्ट्रीय झंडा भी। विज्ञान वहाँ सत्ता का एक औजार भी है।
तीसरी, अंटार्कटिक संधि प्रणाली ATS एक बहुत ही नाजुक और कीमती चीज है। ये शीत युद्ध की कूटनीति की एक बड़ी सफलता थी, लेकिन भविष्य के दबाव झेल पाएगी या नहीं ये देखना होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अहमियत दिखाती है।
भारत जैसे देशों के लिए भी ये अहम है।
बिल्कुल। चौथा, संरक्षण बनाम शोषण का तनाव लगातार बना हुआ है। मछली पकड़ने से लेकर पर्यटन तक, हर चीज में ये सवाल है कि इस्तेमाल करें या बचाएं। ये पूरी दुनिया में संसाधनों पर बढ़ते दबाव का एक छोटा सा प्रतिबिंब है।
और पांचवा?
पांचवा, अंटार्कटिका एक वैश्विक जलवायु बैरोमीटर है। वहां जो होता है उसका असर हम सब पर पड़ता है। बर्फ का पिघलना सिर्फ पेंगुइन के लिए नहीं, हमारे तटीय शहरों के लिए भी खतरा है। ये क्लाइमेट एक्शन की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।
किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, जैसे डॉट्स का कहना कि अंटार्कटिका कोई खाली प्राकृतिक वीराना नहीं बल्कि मानव कल्पना, वीर गाथा, वैज्ञानिक प्रयास और राजनीतिक बातचीत के माध्यम से सक्रिय रूप से निर्मित स्थान है। ये पूरी सोच बदल देता है।
हाँ बिल्कुल। या फिर ये कि अंटार्कटिका में विज्ञान कभी सिर्फ विज्ञान नहीं होता, ये भू राजनीति की मुद्रा भी है। कितना सच है, ज्ञान की खोज भी कैसे सत्ता के खेल से जुड़ जाती है।
और संधि पर उनका कहना, अंटार्कटिक संधि शीत युद्ध की समस्या का एक शानदार समाधान था। सवाल यह है कि क्या ये 21वीं सदी की समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की वैश्विक दौड़ का सामना कर सकता है। ये इसकी नाजुकता को दिखाता है।
और पर्यटन पर वो टिप्पणी, पर्यटन और मीडिया के माध्यम से अंटार्कटिका का उपभोग किया जा रहा है। ये महाद्वीप को अत्यधिक प्रेम से मालने का जोखिम उठाता है। सोचने वाली बात है कि कहीं हम जिसे बचाने चले हैं उसे ही नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे।
तो ये सारी जानकारी आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है, हम इससे क्या सीख सकते हैं?
एक तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक मॉडल है। ATS दिखाता है कि दुश्मन देश भी साझा हित के लिए साथ आ सकते हैं। शायद समुद्र, अंतरिक्ष या साइबर स्पेस जैसे दूसरे साझा मंचों के लिए यहाँ से कुछ सीखा जा सकता है।
दूसरा, ये हमें मीडिया को और ध्यान से देखना सिखाता है। अगली बार कोई नेचर डॉक्यूमेंट्री देखें तो सोचे कि कौन सी कहानी सुनाई जा रही है और कौन सी छिपाई जा रही है।
तीसरा, जलवायु परिवर्तन का खतरा ज्यादा असली लगता है जब हम सुनते हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने से हमारे अपने शहरों पर असर पड़ सकता है, तो ये मुद्दा दूर का नहीं रहता।
हाँ, ये बात सही है।
और ये विल्डरनेस या प्रकृति की हमारी समझ को भी बदलता है। दुनिया का सबसे दूर का कोना भी इंसानी राजनीति और असर से अछूता नहीं है।
सही कहा। तो कुल मिलाकर यह हमें एक ज्यादा जागरूक वैश्विक नागरिक बनाता है जो दुनिया की जटिलताओं को बेहतर समझता है।
तो अंत में कह सकते हैं कि अंटार्कटिका एक आईना है, इसमें इंसानियत की अच्छाई भी दिखती है, सहयोग, जिज्ञासा और बुराई भी, राष्ट्रवाद, लालच, शोषण।
और सबसे अहम बात शायद यही है कि ये कोई स्थिर जगह नहीं है, ये बदल रही है और इसका भविष्य हमारे आज के फैसलों पर टिका है। ये हमसे अलग नहीं, हमारी ही कहानी है।
और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, अगर अंटार्कटिक संधि प्रणाली भविष्य के दबावों जैसे जलवायु परिवर्तन या संसाधनों की होड़ को नहीं झेल पाई तो क्या हम एक नए वीर युग की तरफ बढ़ रहे हैं जहां दौड़ ध्रुव के लिए नहीं बल्कि संसाधनों पर कब्जे के लिए होगी?
या फिर क्या जलवायु परिवर्तन का साझा खतरा ही हमें हमेशा के लिए वैश्विक सहयोग की ओर धकेल देगा? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।